राघवेंद्र ने अपने खास आदमी ललन को वैदेही के घर के आगे तैनात कर रखा था। वैदेही की भी ललन पर पूरी नज़र थी। दोपहर के 3 बज रहे थे और वैदेही अपनी मिशन पर जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने नरगिस के जरिए अपना कॉस्ट्यूम और बाकी का ज़रूरी सामान पहले ही मंगवा लिया था। पगड़ी बांधते हुए वैदेही ने खुद को आईने में देखा और कहा, ग्रेट वैदेही रघुवंशी, एक बार फिर राघवेंद्र की आंखों के सामने से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके लेकर आऊंगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उससे पहले इन भाड़े के गुंडों के लिए भी कुछ इंतजाम कर लिया जाए। वैदेही अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसने काले रंग का सूट पहन रखा था और उसके ऊपर गहरे भूरे रंग की पगड़ी पहन रखी थी। उसने अपने चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी मूछ लगा रखी थी और आंखों पर गोगल चढ़ाने के बाद वो बिल्कुल एक पंजाबी लड़का लग रही थी। हेलो नरगिस, वैदेही ने नरगिस को फ़ोन करके कहा, घर कब तक आ रही हो? तुम तैयार हो गई हो क्या? हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, बस तुम्हारा ही इंतज़ार है। तुम्हें पता है ना क्या करना है? वैदेही ने पूछा। हाँ, मुझे प्रतीक सर ने सब समझा दिया था। भले ही मैं तुम्हारी तरह बड़ी रिपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिंग तो मुझे भी करनी आती है। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूँगी। ठीक है, फिर जल्दी से घर पहुँचो, वैदेही ने कहा और कॉल कट कर दिया। वो नरगिस के आने का इंतज़ार कर रही थी। ललन और जीवन अभी भी वहीं पर मौजूद थे और उनकी हर आने जाने वालों पर उनकी नज़रें जमी हुई थीं। कुछ देर बाद नरगिस वहां पर पहुंच चुकी थी। उसके साथ एक लेडी डॉक्टर भी मौजूद थी। जैसे ही वो लोग अपार्टमेंट के दरवाजे में घुसे, नरगिस ने उन्हें सुनाने के लिए थोड़ा ज़ोर से बात करनी शुरू कर दी। डॉक्टर, मेरी फ्रेंड ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे वैदेही के लिए बहुत डर लग रहा है। मुझे उसे बीमार हालत में अकेले छोड़कर ऑफिस जाना ही नहीं चाहिए था, नरगिस ने हल्का रोने की एक्टिंग की। घबराइए मत, पहले मैं उनका अच्छे से चेकअप कर लूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अच्छा हुआ कि वो आज ऑफिस नहीं गई और घर पर आराम कर रही थी। अब आप उन्हें कुछ दिन ऑफिस और इन तामझाम से दूर ही रखिएगा, डॉक्टर ने जवाब दिया। दोनों इसी तरह बातें करते हुए अंदर चली गईं। ललन और जीवन ने उनकी पूरी बातें सुन ली थी। लगता है रिपोर्टर मैडम बीमार हो गई है दादा, उनकी बातें सुनकर जीवन ने जवाब दिया। हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। अब दूसरों की नाक में दम करेगी तो किसी न किसी की बद्दुआ तो लगेगी ना। वैसे देखा जाए तो ये काम अच्छा हुआ। हाँ, काम तो बहुत अच्छा हुआ। अब थोड़ी और ज़्यादा बीमार होकर टपक जाए तो भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे, अभी उसके मरने की दुआ मत कर, अभी तो उसे अपनी आंखों के सामने भैया जी को राज करते देखना है, ललन ने आंखें दिखाकर कहा। तो फिर आप उस रिपोर्टर के बीमार होने पर इतना खुश क्यों हो रहे हैं दादा, जीवन ने मासूमियत से पूछा। अरे, हम तो इसीलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि बीमार हालत में कोई आदमी बाहर नहीं जा पाता। ऐसे में अब हम भी मज़े से भैया जी के जीत के जश्न में शामिल होंगे। इसे पड़े रहने दो बेड पर, हम तो हमारे भैया जी के जीतने की खुशी में खूब नाचेंगे गाएंगे, ललन ने खुश होकर कहा। ललन अपनी जगह से बाहर आया और अपार्टमेंट से जाने लगा। तभी जीवन उसके पीछे दौड़कर गया और उसे रोकते हुए कहा, याद है ना दादा, पिछली बार हम मेला देखने गए थे और हमारे पीछे से वो रिपोर्टर वहाँ से भाग गई थी। उस दिन भी राघव दादा बहुत गुस्सा हो गए थे। आज का दिन उनके लिए बहुत खास है, अगर हमने कोई लापरवाही की तो वो हमारी जान ले लेंगे। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है, एक बार भैया जी को फ़ोन करके उनकी परमिशन ले लेते हैं, कहकर ललन ने तुरंत राघव को फ़ोन किया। हेलो भैया जी, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, फ़ोन उठाते ही ललन ने झट से बोला। उसने सुना कि राघवेंद्र के पीछे से ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही थी और महाराष्ट्र विकास पार्टी के जयघोष के नारे लग रहे थे। भैया जी, आप जीत गए क्या? ललन ने पूछा। अब इसमें पूछने की क्या बात है? हाँ, हमारी पार्टी की ही जीत हुई है, हम भी हमारे प्रदेश से विजयी घोषित हुए हैं। तुम अपनी जगह से हिलना मत, बाकी हम तुमको अलग से पार्टी दे देंगे। अभी तुम फ़ोन रखो, यहाँ काफ़ी शोर है, हमें सुनाई नहीं दे रहा। ललन की पूरी बात सुने बिना ही राघवेंद्र ने फ़ोन कट कर दिया। ललन खुश होकर वहाँ पर नाचने लगा। क्या कर रहे हो दादा, यहाँ पर किसी ने देख लिया तो पागल समझेंगे, जीवन ने उसे रोका। अरे, जिसको जो समझना है समझने दो, हम तो ऐसे ही नाचेंगे गाएंगे और खुशियां मनाएंगे, हमारे भैया जी इस बार फिर से जीत गए, ललन ने खुश होकर कहा। तब तो सच में नाचने की ही बात है, जीवन भी उसके साथ नाचने कूदने में उसका साथ देने लगा। तभी वैदेही ऊपर से नीचे आई। वो उन दोनों के पास गई और अपनी आवाज़ को थोड़ा भारी करते हुए बोली, की गल है मुंडे हो, ऐमे बांद्रा वांगू फुदक क्यों रह रहे हो? सरदार जी, तुम कहाँ बोल रहे हो, हमको कछु समझ नहीं आ रहा, ललन ने हाँफते हुए कहा। और हाँ दादा, अगर आप हमारे नाचने का कारण पूछ रहे हैं तो आज हमारे राघवेंद्र दादा फिर से चुनाव में जीत गए, अब वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तो हम नाच रहे हैं, जीवन ने कहा। आते बहुत ही चंगी खबर सुनाई सी, तुम दोनों ऐसे ही नाचते रहो, मैं चला, कहकर वैदेही वहां से जाने लगी। हाँ हाँ जाओ, ललन ने कहा। वैदेही वहां से आराम से निकल चुकी थी। उसके जाने के कुछ देर बाद डॉक्टर भी नीचे आई, नरगिस भी उसके साथ थी। डॉक्टर और नरगिस को एक साथ देखकर वो दोनों जल्दी से एक गाड़ी के पीछे छुप गए। डॉक्टर, वैदेही ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई, नरगिस ने कहा। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उन्हें दवाइयाँ दे दी हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। ऐसे में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप उन्हें प्रॉपर आराम दें। कल शाम तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो हमें उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, डॉक्टर ने उसकी बात का जवाब दिया।
थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आप यहाँ तक आई। मैं वैदेही का ख्याल रखने की कोशिश करूंगी। आई विश कि हमें उसे एडमिट करवाने की नौबत ना आए। मैं भी उनके अच्छी हेल्थ की दुआ करूंगी। अब आप जाइए और उनका ख्याल रखिए, उन्हें आपकी ज़रूरत होगी। डॉक्टर ने नरगिस का कंधा सहलाया और वहां से चली गई। नरगिस भी वहां से ऊपर जा चुकी थी। उन दोनों के जाने के बाद लल्लन और जीवन गाड़ी के पीछे से बाहर आए। थोड़ी देर पहले तो हमने उस रिपोर्टर को बालकनी में खड़ा देखा था, आराम से बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। इतनी देर में कोई इतना बीमार कैसे हो सकता है भैया, जीवन ने हैरानी से पूछा। अरे कोई बीमार आदमी जब बारिश में भीगता है तो उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है, देखा नहीं वैदेही जी अपना हाथ बाहर निकालकर कैसे भीग रही थी। हो सकता है उस वजह से और बीमार हो गई होगी। तू ज़्यादा दिमाग मत लगा, जितना काम बोला गया उतना ही कर, लल्लन ने उसे डांटा। जीवन ने चुपचाप उसकी बात मान ली और वहां पर बैठ गया। दोनों आने जाने वाले व्यक्तियों पर नजर रखने लगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विकास पार्टी के ऑफिस में जश्न का माहौल था। पार्टी की जीत ऑफिशियल तौर पर घोषित कर दी गई थी। वहां पर सभी विधायक मौजूद थे, उनके गले में माला पहनाकर अभिवादन किया जा रहा था और सभी एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। यशवर्धन ये लो हमारी जीत की मिठाई खाओ, राघवेंद्र यशवर्धन के पास जाकर बोला। जीत तो हमारी भी हुई है राघवेंद्र, अभी तुम इन लड्डुओं से काम चलाओ, बाद में जब हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो तुम्हारे लिए बेहतरीन दावत का इंतजाम करेंगे, यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए पूरे विश्वास के साथ कहा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, हम बता रहे हैं कुछ भी ऐसा वैसा उल्टा सीधा किया तो एक मिनट के लिए भी नहीं सोचेंगे कि कभी तुम हमारे दोस्त थे। वो तो तुमने पहले भी कभी नहीं सोचा, यशवर्धन ने जवाब दिया। दोनों के बीच तनातनी होने लगी थी। त्यागी जी ने दूर से उन दोनों को बहस करते हुए देखा तो वो उनके पास आए।
कम से कम आज के दिन तो ये दुश्मनी भूल जाओ, मत भूलो कि तुम दोनों महाराष्ट्र विकास पार्टी के सदस्य हो और यहाँ की परंपरा एक दूसरे को आगे बढ़ाने की है, न कि एक दूसरे की टांग खींचकर उसे पीछे लाने की। अरे भाड़ में गए आप और आपकी परंपरा, राघवेंद्र गुस्से में बोला। ये हमारे खिलाफ प्लानिंग पर प्लानिंग किए जा रहा है और आपको अभी भी अपनी परंपरा की पड़ी है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने इसके खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। हम चुप हैं और हमेशा तुम्हारा समर्थन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी नज़रों से कुछ छुपा हुआ है। राघवेंद्र के गुस्से में बात करने की वजह से त्यागी जी भी भड़क गए। मतलब क्या है आपके कहने का, चुनाव होने के बाद से हम हमारे गांव में हैं, आप ऐसे हम पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत ही क्या है राघवेंद्र, इतनी घटिया हरकत तुम्हारे अलावा कोई और कर भी नहीं सकता, यशवर्धन ने कहा। क्या कोई बताएगा आखिर हमने किया क्या है, राघवेंद्र ने झुंझलाकर पूछा। तुम बार बार पूछकर ऐसे मासूम नहीं बन जाओगे, कुछ दिन पहले यशवर्धन पर जो हमला हुआ था उसमें तुम्हारा ही हाथ था। हमने इस बारे में तुमसे बात नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने गुनाहों पर पर्दा डाल दोगे, त्यागी जी ने पूरा मामला स्पष्ट किया। उनकी बात सुनकर राघवेंद्र हंसा और फिर बोला, आज जीत की खुशी में ज्यादा चढ़ा लिए क्या, हम इस पर हमला करवाएंगे। अरे हम जो काम करते हैं वो खुलेआम चौड़े में करते हैं, हमने रिपोर्टर को मारा था वो तक सबको पता है, तो इस जैसे दो कौड़ी के आदमी पर छुपकर हमला करवाएंगे क्या। अपनी औकात मत भूलो राघवेंद्र, यशवर्धन उस पर चिल्लाया। औकात तो तुम अपनी भूल रहे हो, अपने पिताजी के दम पर यहाँ तक आ गए, तुम्हें क्या लगता है सीएम की कुर्सी तुम्हें मिल पाएगी क्या। राघवेंद्र और यशवर्धन के बीच गहमा गहमी बढ़ती जा रही थी, उनके बीच भी छोटी सी बहस अब बड़ा रूप लेने लगी थी। गुस्से में दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया था और त्यागी जी उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, थोड़ी देर में मीडिया यहाँ पहुँचती होगी, अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ ऐसे लड़ते देख लिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, छोड़ो एक दूसरे को। दोनों ने त्यागी जी की बात नहीं सुनी तो वो जोर से चिल्लाकर बोले, अगर तुम दोनों ने हमारी बात नहीं मानी तो मैं सीएम के पद के लिए तुम दोनों को ही उम्मीदवार के पद से हटा दूंगा। त्यागी जी की बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे की कॉलर छोड़ दी थी और एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे।